आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट किया पेश। नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए हुई। बजट में 4 करोड़ से अधिक युवाओं के लिए रोजगार और कौशल अवसर बढ़ाने की 5 योजनाओं के लिए 2,00,000 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा। विकास आवश्यकताओं के लिए विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर दर 40% से घटाकर 35% की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 140 करोड़ लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं और अमृतकाल के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला है बजट। और सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी की परीक्षा दोबारा कराने से किया इनकार, कहा मौजूद आंकड़े नीट पेपर के सिस्टमैटिक लीक होने का नहीं देते संकेत। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश किया। ये नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। श्रीमती सीतारमण ने आज 7वीं बार बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने व्यक्तिगत आयकर दरों के संबंध में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वालों के लिए 2 घोषणाएं की। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी मानक कटौती को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। इससे नई कर व्यवस्था में लगभग 4 करोड़ वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को लाभ होगा। नई कर व्यवस्था में कर दर संरचना में भी संशोधन किया गया है। 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर 5%, 7 से 10 लाख रुपए तक 10%, 10 से 12 लाख रुपए तक 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक 20% और 15 लाख रुपए से अधिक आय पर 30% तक कर लगाए जाने का प्रस्ताव है। इससे नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में 17,500 रुपए तक की बचत हो सकेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास कराधान को सरल बनाने का है। हमने पिछले 5 वर्षों में अनेक उपाय किए हैं, जिसमें कॉरपोरेट टैक्स और व्यक्तिगत आयकर के लिए छूट और कटौतियों के बिना सरलीकृत कर व्यवस्थाएं प्रारंभ करना शामिल है। वित्त वर्ष 2022-23 में 58% कॉरपोरेट कर सरलीकृत कर व्यवस्था द्वारा जमा हुआ। बजट में रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहल के पैकेज की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार संबंधित प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं लागू की जाएंगी। रोजगार पाने वालों को नियुक्त करने में कर्मचारियों और नियोक्ताओं की सहायता के लिए सब्सिडी के रूप में 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। दूसरी योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तीसरी योजना नियोक्ताओं पर केंद्रित होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में विकास आवश्यकताओं के लिए विदेशी पूंजी आकर्षित करने के वास्ते विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर दर 40% से घटाकर 35% की गई है। वित्त मंत्री ने ग्रामीण बुनियादी ढांचा सहित समग्र ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की है। अगले 2 वर्ष में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी। इसमें प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था भी शामिल है। 10,000 आवश्यकता आधारित संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण में सरकार 1 करोड़ शहरी निर्धन और मध्यवर्गीय परिवारों की आवास जरूरतें पूरी करने के लिए 10,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि ये बजट हर वर्ग को नई ताकत देने वाला है। इस बजट से आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुखी और देश के 140 करोड़ लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं और अमृतकाल के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला बजट है। आम बजट 2024-25 विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है।
आम बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख, 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षा और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। स्वाभाविक रूप से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं और अब वक्त है एक ब्रेक का।
अब सिर्फ सजा नहीं मिलेगी, होगा न्याय। भारतीय न्याय संहिता मतलब नया कानून, 1 जुलाई से लागू, आजाद भारत के अपने कानून।
प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय बजट की अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने प्रशंसा की है। लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर एपी तिवारी ने कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट एक संतुलित बजट है, जिसका लक्ष्य कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान देते हुए 2047 तक भारत को विकसित बनाना है।
मेरा मानना है भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की जो सामर्थ्य है उसका सम्यक विकास होगा, और यदि भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है लगातार तो 2047 तक एक विकसित देश के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को उभारने का जो संकल्प है वो निश्चित तौर पर साकार हो सकेगा।
अयोध्या के आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि बजट कृषि क्षेत्र और उससे जुड़ी गतिविधियों को और मजबूत करेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होगी।
बजट आज प्रसारित किया गया है, यह मुख्य ग्रामीण अंचल किसानों को कृषि पर आधारित जितने स्वरोजगार हैं, कृषि में जो इन्वेस्ट करने के लिए जितने हमारे एवेन्यूज हैं और हम कैसे ग्रामीण के युवाओं को उनको स्वावलंबी बनाएं, स्वरोजगार की तरफ बढ़ें, ये सबके लिए यह बजट ही एक बहुत बड़ा कल्याणकारी कदम है।
कांग्रेस ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें आय असमानता दूर करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए कहा कि यह महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को हल करने में विफल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी की परीक्षा दोबारा कराने से इनकार कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद आंकड़े नीट पेपर के सिस्टमैटिक लीक होने के संकेत नहीं देते हैं। ऐसे में इस साल के लिए नए सिरे से नीट यूजी परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा होगा, जिसका खामियाजा इस परीक्षा में शामिल होने वाले 23 लाख से अधिक छात्रों को भुगतना पड़ेगा और प्रवेश कार्यक्रम में व्यवधान पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने और रिजल्ट रद्द करने की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। आईआईटी दिल्ली से प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब तय किए जाने के बाद कोर्ट ने विकल्प 4 को सही मानकर दोबारा रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट किया पेश। नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए हुई। बजट में 4 करोड़ से अधिक युवाओं के लिए रोजगार और कौशल अवसर बढ़ाने की 5 योजनाओं के लिए 2,00,000 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा। विकास आवश्यकताओं के लिए विदेश पूंजी आकर्षित करने के लिए विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर दर 40% से घटाकर 35% की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 140 करोड़ लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं और अमृतकाल के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला है बजट। और सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी की परीक्षा दोबारा कराने से किया इनकार, कहा मौजूद आंकड़े नीट पेपर के सिस्टमैटिक लीक होने के नहीं देते संकेत। प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। नमस्कार।